श्रियम् अनुचरतीं तदर्थिनश्च द्विपदपतीन् विबुधांश्च यत्स्वपूर्णः न भजति निजभृत्यवर्गतन्त्रः कथम् अमुम् उद्विसृजेत् पुमान् कृतज्ञः श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि श्री भगवान आत्मनिर्भर हैं किंतु वे भक्तों पर आश्रित हो जाते हैं। वे न तो लक्ष्मी जी की परवाह करते हैं और न उन राजाओं तथा देवताओं की जो लक्ष्मी जी के कृपा भाजन बनना चाहते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की पूजा न करे। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा सभी भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा तथा स्वर्ग के देवता भी सम्मिलित हैं, किंतु लक्ष्मी जी सदैव भगवान के पीछे पीछे लगी रहती हैं। यद्यपि भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं रहती। ब्रह्म संहिता का कथन है कि भगवान की पूजा हजारों लक्ष्मियां करती हैं, किंतु भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यदि उनकी इच्छा हो तो वे अपनी आह्लादनी शक्ति से लाखों लक्ष्मियां उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु वही भगवान अहेतु की कृपावश अपने भक्तों के आश्रित बन जाते हैं, तो वह भक्त कितना भाग्यशाली है जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो। ऐसा कौन कृतज्ञ भक्त होगा जो भगवान की पूजा और भक्ति नहीं करने लगेगा। वास्तव में भक्त क्षण भर के लिए भी श्री भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल नहीं सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान तथा उनका भक्त दोनों ही रसज्ञ होते हैं। भगवान तथा भक्त के पारस्परिक संबंध को कभी भी भौतिक नहीं समझना चाहिए, यह दिव्य होता है। दिव्य अनुभूतियां 8 प्रकार की हैं: भाव, अनुभाव, स्थायी भाव आदि, जिनकी व्याख्या भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में की गई है। जो लोग भगवान तथा भक्त की स्थिति से अनभिज्ञ हैं, वे भक्त तथा भगवान की पारस्परिक आसक्ति को भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न मानते हैं। वास्तव में यह आसक्ति प्राकृतिक है, इसे भौतिक नहीं मानना चाहिए। मुनि का जो उपदेश है प्रचेताओं के प्रति, इस उपदेश का ये आखिरी श्लोक है। नारद मुनि प्रचेताओं को भगवान की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और भगवान के दिव्य गुणों की महिमा का वर्णन भी कर रहे हैं। इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि भगवान स्वपूर्ण हैं, मतलब आत्मनिर्भर, किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं। भगवान की परिभाषा कई तरह से की जा सकती है। उनमें से एक परिभाषा ये है कि भगवान वो व्यक्ति हैं जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं, अपने आप के ऊपर निर्भर हैं। और सृष्टि में, भौतिक सृष्टि में या आध्यात्मिक सृष्टि में, कोई ऐसे कह नहीं सकता कि मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। हम में से हर एक व्यक्ति वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर है, लेकिन केवल भगवान वो व्यक्ति हैं जो किसी के ऊपर निर्भर न होते हुए केवल अपने आप के ऊपर निर्भर रहते हैं। वो अपने अंदर ही अंदर पूर्ण दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं हमेशा, जो कि उनकी लादिनी अंतरंगा शक्ति का एक रूप है, और इसलिए भगवान को आत्माराम कहते हैं। आत्माराम मतलब अपने अंदर ही अंदर पूरी तरह से संतुष्ट। और जो लोग आत्माराम श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाते हैं, उनके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण ये आह्लादनी शक्ति प्रदान करते हैं, वो देवी आनंद उनके अंतःकरण में प्रदान करते हैं, जिससे कि वो भक्त भी आत्माराम बन जाते हैं। आत्माराम वो व्यक्ति होता है जो भगवान के भक्ति के अलावा और किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं रहता है अपने सुख के लिए। अगर किसी व्यक्ति की चेतना को पहचानना है कि किस हद तक वो सुसंस्कृत है, किस हद तक वो सभ्य है, किस हद तक वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ चुका है, किस हद तक उसे ज्ञान है, तो हमें क्या देखना चाहिए कि किन चीजों में ये व्यक्ति अपना सुख या आनंद लेने का प्रयत्न करता है। यह परीक्षा है। कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है कि केवल स्थूल भोग में रमण करना इच्छा करे, कोई शराब में, कोई मांसाहार में, व्यभिचार में, जो बिल्कुल पाप से पाप है उनमें रमण करता है। थोड़े लोग होते हैं तो इतना ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़े और लोग होते हैं जो सूक्ष्म प्रकार का भौतिक सुख लूटना चाहते हैं, जैसे दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं। अगर वो लोग ऐसे नीच पाप नहीं करते हैं तो वो सूक्ष्म अपने बुद्धि के स्तर पे इस संसार का भोग करना चाहते हैं, क्योंकि ये कविता, ये दर्शन इत्यादि के माध्यम से उनको एक प्रकार का सुख मिलता है, एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है जो भी भौतिक है। परंतु सूक्ष्म होने के नाते ये जो सुख है, ये जो शराब पीना, व्यभिचार करना, कम से कम इन तरह के कार्यों से तो श्रेष्ठ है, फिर भी भौतिक है। और फिर वो लोग हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं इस भौतिक जगत के परे, तो वो तो इनसे श्रेष्ठ हैं, कम से कम वो तो आध्यात्मिक पथ पे लगे हुए हैं। और इनसे भी अधिक बढ़कर हैं वो लोग जो परमात्मा की उपासना करते हैं अपने हृदय में, वो योगी हैं, और अपने ध्यान, अपने प्राणायाम इत्यादि से, अष्टांग योग पद्धति से भगवान जो कि हृदय में स्थित हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इनसे भी श्रेष्ठ हैं भगवान श्री हरि के भक्त, जो कि भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। तो ये भक्त इतने महान होते हैं कि भगवान स्वयं अपने आत्मनिर्भरता का गुण त्याग देते हैं और स्वेच्छा से वो अपने भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। देखिए, भक्ति कितनी शक्तिशाली है कि वो भगवान को भी वश में कर सकती है। जो ज्ञान योग का पथ अपनाते हैं वो निराकार में लीन हो जाकर भगवान हो जाना चाहते हैं, भगवान के समान या स्वयं भगवान हो जाना चाहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग को अपनाकर जो भक्त होता है वो भगवान से भी ज्यादा हो जाता है, यहां तक कि वो भगवान को अपने वश में कर देता है। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूं और मैं अस्वतंत्र हूं, मुझ में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जबकि आत्मनिर्भर होने की वजह से वो तो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्तों के गुण और भक्तों की भक्ति और प्रेम और सेवा को देखकर भगवान इस महत्वपूर्ण गुण को, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, इसको त्यागते हैं और अपने स्वतंत्रता को भक्तों के हवाले कर देते हैं। और पूरी तरह से भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। यह है भक्ति का सौंदर्य। हालांकि भक्त कभी भगवान को वश में करना चाहते नहीं हैं, जैसे मायावादी लोग भगवान बनना चाहते हैं और भक्त भगवान से अधिक बनते हैं, लेकिन भक्त कभी ऐसा चाहते नहीं हैं। वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं हर परिस्थिति में। लेकिन यह इतनी महान बात है कि कोई व्यक्ति बिना किसी इच्छा से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करे, तो भगवान ऐसे भावना को देखकर वो ऋणी हो जाते हैं, जीत लिए जाते हैं। इसलिए ऋणी अवस्था में वो कहते हैं कि मैं क्या दे सकता हूं इनको, मेरे भक्तों ने मुझे इतना कुछ दिया है, तो और मेरे पास कोई शक्ति कोई संपत्ति नहीं है कि मैं इनका ऋण चुका सकूं। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने आप को ही उनके हवाले सौंप देना चाहिए। जैसे पुराने जमाने में जब लोग किसी को नौकर या सेवक रखते थे, तो कई बार ऐसे होता था कि जो जमींदार होते थे वगैरह, वो गरीब लोगों को उधार पैसे देते थे। गरीब लोग बहुत बुरी अवस्था में हुआ करते थे, शादी के लिए, घर को, घर खर्चे के लिए, और फिर ऐसे जो ऋण थे वो गरीब लोग चुका नहीं पाते, और ये ऋण बढ़ता जाता बढ़ता जाता, और फिर वो सारे लोग प्राय उस जमींदार के गुलाम बन जाते। तो कहते कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, इसलिए हम ही आपके हवाले हो जाते हैं, हम आपके हो जाते हैं, हम आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे, जो आपको चाहिए आप हमारे साथ में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है आपका ऋण चुकाने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जितनी ज्यादा शुद्धता से भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं, उतने ही ज्यादा भगवान ऋणी बनते जाते हैं और उस प्रेम में बांधे जाते हैं। और एक स्तर ऐसा आता है जब भक्ति भक्त जो है भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करता है, बिल्कुल शुद्ध भक्त बन जाता है, तो भगवान इतने ऋणी हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि अब मेरे पास ऐसे कोई वस्तु नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है जिससे कि ये ऋण आपका जो मेरे आपके प्रति जो मेरा है मैं उसे चुका सकूं। इसलिए मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया है कि मैं ही आपके हवाले हो जाता हूं, अहम भक्त पराधीन, मैं आपके अधीन हो जाता हूं, इसके अलावा और कोई मार्ग मेरे लिए नहीं है। तो भगवान के गुणगान देखिए, भगवान की महिमा देखिए कि इतने बड़े होने के बाद भी वो एक साधारण जीवात्मा जो कि शुद्ध है उसके प्रति बिल्कुल शरणागत हो जाते हैं। ये भगवान के गुण हैं। अभी जब यहां प्राणियों को मनुष्यों को बताया जाता है कि आपको भगवान के शरणागत होना चाहिए, तो शरणागति ये किसी को पसंद नहीं है। किसी दूसरे के प्रति शरणागत होना ये भौतिक बुद्धि को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अहंकार बीच में आता और कहता हम दूसरों को शरण में क्यों जाएं, दूसरे हमारे शरण में आए वो ठीक है, लेकिन हम किसी के शरण में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे पास स्वतंत्रता है और इसका उपयोग हमें केवल हमारे अहंकार को बढ़ाने के लिए, जो प्रभुत्व की भावना हमारे अंदर है उसको बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए, और हमारी स्वतंत्रता तो लेश मात्र है। हम हर स्थिति में भगवान के ऊपर निर्भर है, फिर भी हम भगवान के शरण नहीं जाना चाहते। लेकिन भगवान पूर्ण स्वतंत्र होने के बावजूद, पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के बावजूद, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और सारे जीवात्माओं के सारे अवतारों के उद्गम होने के बावजूद, वो एक साधारण जीव आत्मा के शरण में जाने के लिए हिचकिचाते नहीं हैं, जब वो देखते हैं कि वो भक्त कितना शुद्ध है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सीखने लायक बात है। तो यह तात्पर्य स्वपूर्ण शब्द का, और भगवान बताते हैं कि ऐसे जो वरदान भगवान अपने भक्त को देते हैं कि वो अपने आप ही भक्तों के हवाले हो जाते हैं, तो ऐसा भक्त कितना भाग्यशाली है और उसको कितना कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान ने ऐसा कदम उठाया, भक्त का ही शरण ग्रहण कर लिया। इसलिए यहां पर नारद मुनि बताते हैं, कथम अमुम उद्विसृजेत पुमान कृतज्ञः, कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वास्तव में कृतज्ञ होते हुए श्री भगवान की पूजा न करे। जब भगवान ने अपने स्वपूर्णता को त्याग कर वो भक्त के शरण में आया है, तो भक्त को क्या कृतज्ञ नहीं होना चाहिए कि इतने बड़े भगवान हैं और वो मेरे सेवक बन के आए हैं, मेरे शरण में आए हैं। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों की महानता है और भगवान की महानता है। भक्त भगवान की महानता को स्वीकार करते हैं और भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, और भगवान अपने भक्तों की जो महिमा है उसका गुणगान करना चाहते हैं, और भक्तों को बड़ा देखना चाहते हैं, उनको करना चाहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, उन्होंने कई सुंदर लीलाएं किए और दिखाया वास्तव में इस तथ्य को कि कैसे मैं मेरे भक्तों के शरणागत हो जाता हूं, अपने मित्रों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, गोपियों के प्रति, बल्कि सारे ब्रजवासियों के प्रति। उन्होंने अपने आप को सौंप दिया उनके हवाले। इसलिए सारे जो वृंदावन के निवासी थे वो सब कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पति पत्नी से ज्यादा, अपने माता पिता से ज्यादा वो कृष्ण से प्रेम करते थे। और ऐसे प्रेम की भावना से कृष्ण भगवान बंधे गए और उन्होंने निम्न स्तर अपनाया स्वेच्छा से। तो क्या स्तर है ब्रजवासियों का, क्या सौभाग्य है उनका। इसलिए शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जब ये सुनते हैं कि ब्रजवासी और खास करके नंद महाराज और यशोदा माता का ये अहो सौभाग्य था कि कृष्ण उनके शरण में आए, तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न किया, नंदः किम् अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपो यस्यः स्तनं हरिः। वो कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे शुकदेव गोस्वामी, नंदः किम् अकरोत्, नंद महाराज ने ऐसे कौन से कार्य, ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे, कौन सी तपस्या की होगी, कौन सी भक्ति की होगी, जिससे कि भगवान स्वयं उनके दास बनकर आए हैं, भगवान उनके सेवक बन के आए हैं, उनके पुत्र के रूप में आए हैं और नंद महाराज की सेवा कर रहे हैं। श्रेय एव महो उदया, तो कौन से कार्य हैं, कौन से उन्नत कार्य हैं, अवश्य कोई अद्भुत कार्य किए होंगे जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण जो सबके पिता हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में घोषणा करते हैं, पिता हमस्य जगतो, मैं सारे जगत का पिता हूं, माता धाता पितामहः, मैं माता भी हूं, धाता भी हूं, पितामह भी हूं। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण अब नंद महाराज के पुत्र बनकर आए हैं, इसलिए परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि क्या कार्य उन्होंने किया होगा। और नंद महाराज अकेले नहीं थे, साथ साथ माता यशोदा भी थी, इसलिए पूछते हैं, यशोदा च महाभागा, और यशोदा भी कितनी भाग्यशाली, महाभागा, अति भाग्यवान माता यशोदा, उनको भी भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में मिले। पपो यस्यः स्तनं हरिः, ये हरि उनके पुत्र के रूप में आकर यशोदा माता का स्तनपान कर रहे थे। ऐसा अहो सौभाग्य नंद महाराज और यशोदा माता को मिला। इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से दोनों यशोदा माता और नंद महाराज के ऊपर निर्भर रहे, और कृष्ण भगवान के वास्तविक अस्तित्व को नंद महाराज और यशोदा माता और अन्य ब्रजवासी योग माया के प्रभाव से भूल गए। अगर नहीं भूलते तो फिर वो कृष्ण को अपने से निम्न श्रेणी का कैसे समझते? वो कैसे सोचते कि हमें कृष्ण की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें कृष्ण का देखभाल करना चाहिए, हमें कृष्ण को लाड़ प्यार देना चाहिए? वो ऐसे नहीं सोचते। लेकिन क्योंकि योग माया ने उनके आंखें ढक दी थी और केवल प्रेम के आंखों से वो कृष्ण की ओर देख रहे थे, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझा। आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, नैनं विरिञ्च न भवो न श्रीरप्यंग संशय प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। वो कहते हैं कि माता यशोदा, यहां उसको गोपी कहते हैं, माता यशोदा और सब सारी महिलाएं वृंदावन की वो सब गोपी हैं, और अन्य जो पुरुष थे वो सब गोप थे। गोप और गोपियों का गांव है वृंदावन, इसलिए कृष्ण का नाम भी गोप है, गोप कुमार कृष्ण का नाम है। नंद गोप का पुत्र गोप कुमार या गोपाल। ले भिरे प्रसादम गोपी, माता यशोदा उस गोप वृंदावन के मुख्य गोपी को ऐसा जो एक ऐसी कृपा है प्रसादम ले भिरे जो प्राप्त हुआ, यत्त प्राप विमुक्तिदात, जो मुक्ति प्रदान करने वाले श्री हरि ने उनके ऊपर कृपा की, ये बड़ी विचित्र बात है। विमुक्तिदात मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले, मुकुंद, मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले। तो वही मुकुंद जब वृंदावन में नंद महाराज और यशोदा माता के पुत्र के रूप में आए तो उन्होंने ऐसी कृपा बरसाई इन दोनों के ऊपर, जो कि वास्तव में बड़े बड़े योगियों को देवताओं को नहीं प्राप्त हुई। यहां सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, न इनम, ये जो प्रेम है, ये जो सेवा का मौका है, जब भगवान उनके प्रति शरणागत हुए, ऐसा रस का आदान प्रदान न इनम विरिंचो न भवो न श्रीर। विरिंच मतलब ब्रह्मा जी का नाम है और भव मतलब शिव जी का नाम है। ब्रह्मा जी को यह अवसर नहीं मिला, इतना भाग्य ब्रह्मा जी का नहीं था, हालांकि वो सृष्टि करता है, प्रमुख जीव है इस ब्रह्मांड के, उनको नहीं मिला। न भवो, महादेव शिव जी को नहीं मिला जो परम वैष्णव माने जाते हैं, और यहां तक कि न श्रीर, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी को भी यह भाग्य नहीं मिला। अंग संशया, लक्ष्मी देवी जो कि भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर निवास करती हैं श्रीवत्स के रूप में, तो वो लक्ष्मी देवी दो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, इतनी ऊंची भक्त हैं, वो भी इस ऐसे प्रसाद को, ऐसे कृपा को नहीं प्राप्त कर सकी जो कि माता यशोदा ने प्राप्त किया। तो लक्ष्मी जी, जैसे यहां श्लोक में बताया गया है, लक्ष्मी जी के कृपा भाजन होने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के सभी लोग इच्छुक हैं। सारे बद्ध जीव यहां ऐश्वर्य चाहते हैं, और लक्ष्मी देवी ऐश्वर्य की महारानी है, सबको ऐश्वर्य प्रदान कर सकती हैं। तो दुनिया से सारे लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। दो अन्य धर्मों के लोग भी, जो हिंदू अलग बात है, लेकिन अन्य धर्म के हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी की तस्वीर रखेंगे, क्योंकि सभी को धन प्रिय है। तो राजा होंगे, महाराजा होंगे, यहां तक कि देवता गण भी यहां बताया हुआ है। द्विपद पतीन विविधांश यत्स्वपूर्णः, बड़े बड़े राजा देवता सब लक्ष्मी जी के पीछा करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी का नाम है चंचला। चंचला मतलब वो कहीं स्थिर नहीं रहती हैं, चंचल हैं, किसी व्यक्ति के पास ज्यादा समय रहती नहीं है। चंचल व्यक्ति कौन होता है? कभी इधर कभी उधर, कभी ये करता है कभी वो करता है, जैसे बच्चे बहुत चंचल होते हैं। तो लक्ष्मी देवी को चंचला इसलिए बताया गया है कि वो उनकी कृपा किसी भी एक व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं देती है, भौतिक कृपा। इसलिए आज कोई व्यक्ति बहुत अमीर है तो कल गरीब, आज राजा तो कल रंक। और अगर इस जीवन में कोई जन्म से लेकर मृत्यु तक अमीर है, लक्ष्मी देवी की कृपा उसने प्राप्त की है, ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में भी वो अमीर बनेगा। उसके कर्मों के अनुसार उसे जन्म लेना पड़ेगा। तो लक्ष्मी देवी ज्यादा समय किसी के पास टिकती नहीं है, हालांकि बड़े देवता राजा भी उनकी उपासना करते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और ये लक्ष्मी देवी जो किसी के पास रहती नहीं है, वो हमेशा विष्णु के पास रहना चाहती है, उनकी सेवा में। विष्णु से कभी अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये विष्णु कभी कभी लक्ष्मी जी को भी छोड़कर अपने अन्य भक्तों के ऊपर कृपा देने के लिए जाते हैं। मतलब देखिए, लक्ष्मी देवी भी भगवान विष्णु को वश में नहीं कर सकती हैं, जैसे कि भगवान के अन्य शुद्ध भक्त उनको वश में कर सकते हैं। भगवान विष्णु जब देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो लक्ष्मी देवी को भी छोड़कर आने के लिए तैयार होते हैं। लक्ष्मी देवी उनको वश में नहीं कर सकती हैं। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, कि गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, और भगवान अपनी लादनी शक्ति से और ऐसे लाखों लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कभी भी लक्ष्मी देवी के वश में नहीं होते हैं, हालांकि लक्ष्मी देवी ये चाहती हैं कि हमारे हमेशा भगवान हमारे साथ में रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में कालिया दमन किया, कालिया जो कि भयंकर जहरीला सांप था जिसने सारे यमुना नदी को दूषित कर दिया था, तो उस समय जब कालिया की मृत्यु ही होने वाली थी प्राय, उस समय नाग पत्नियां जो कालिया के अनेक पत्नियां थीं, वो हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण के सामने आई, अपने पति की ओर से क्षमा मांगने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए, और उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि कृपया अभी और मत मारिए इसको, ये हमारे पति हैं, फिर हम विधवा हो जाएंगे, और वैसे भी हमारे पति को आपकी कृपा मिल गई है, अब और इसे आप कष्ट मत दें, इसे छोड़ दीजिए। और उस समय उन्होंने एक सुंदर श्लोक बोला, कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणु स्पर्शाधिकारः यद्वांछया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। उन्होंने कहा, कस्य अनुभवस्य न देव विद्महे, जो हमारे पति हैं इन्होंने कौन से कार्य, पुण्य, तपस्या वगैरह की होगी पूर्व जन्मों में, कौन से ऐसे भक्ति की होगी, क्या किया होगा जिसकी वजह से तवांग्र रेणु स्पर्श अधिकार है, कि आपके चरण कमलों की धूली का स्पर्श करने का अधिकार उनको मिल गया है। वैसे जो सांप होता है बहुत ईर्ष्यालु प्राणी माना जाता है, बहुत ईर्ष्या करता है। दो व्यक्ति, दो प्राणी होते हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर, जो बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। एक है सांप, दूसरा बिच्छू, मनुष्य। मनुष्य बहुत ईर्ष्यालु होता है। और चाणक्य पंडित कहते हैं कि किसी ईर्ष्यालु सांप को आप मंत्रों के बल पर वश में कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य को कैसे वश में किया जाए, उसकी ईर्ष्या को कैसे नष्ट की जाए, बहुत मुश्किल है। तो खैर, जिस जीव को एक सांप का शरीर मिलता है, इसका मतलब है कि उसने बहुत ईर्ष्या की होगी, कोई पुण्य की संभावना नहीं है। तो नाग पत्नियां थोड़े संभ्रम में पड़ गए हैं कि सांप का शरीर मिला इसका मतलब बहुत पाप किया होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पति को ऐसे विशेष कृपा आपकी मिल रही है कि आपके चरण कमलों की धूली उसके सर पर लग रही है। तवांग्री तव अंघ्री रेणु, अंघ्री मतलब चरण कमल, रेणु मतलब धूल, स्पर्श अधिकार है, स्पर्श करने का अधिकार उसे मिला है। और इतना ही नहीं, ये अधिकार, ये जो अवसर है, ये लक्ष्मी जी को भी नहीं मिलता है। यद वांछया श्रीर ललनाचरत तपो, यद वांछया, आपके चरण कमलों की धूली सर्प लग जाए इस इच्छा को लेकर, यद वांछया श्री, जो लक्ष्मी देवी हैं, ललना सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं वो, आचरत तपह, उन्हें बहुत तपस्या की है। विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता, सारे इच्छाओं को त्याग कर, सुचिरम मतलब बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, धृतव्रता दृढ़ व्रत का पालन किया, तपस्या किया, लाखों लाखों सालों तक आपके चरण कमलों की धूली उनके सर पर प्राप्त करने के लिए, लेकिन लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिली। और वो चरण कमल की धूली आज हमारे पति को मिल रहा है, तो कितना सौभाग्य है हमारा। इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पति ने क्या पुण्य किया होगा, कस्य अनुभव, क्या किया होगा उन्होंने। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की कृपा और उनकी भक्ति और भक्तों से प्रेम, कि जो कृपा वो लक्ष्मी जी को नहीं देते, ब्रह्मा जी को नहीं देते, शिव जी को नहीं देते, बड़े बड़े देवताओं को नहीं देते, वो अपने भक्तों के ऊपर दे देते हैं। इसलिए नारद मुनि यह कह रहे हैं कि देखो, भक्त को कितना कृतज्ञ होना चाहिए भगवान की कृपा प्राप्त करके। हमेशा भक्त को चाहिए फिर कि वो भगवान की सेवा में संलग्न रहे, कभी भी भगवान की सेवा को त्यागे नहीं, और अपने हृदय से केवल एक ही इच्छा रखे, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर संतुष्ट होते हैं, तो ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। समसिद्धिर हरितोषणम, हमारे जीवन की समसिद्धि क्या है, हरितोषणम, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। इस प्रकार से नारद मुनि ने प्रचेताओं को यह सुंदर उपदेश दिया और उनको प्रोत्साहित किया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई टीका टिप्पणी प्रश्न? प्रश्न यह है कि भगवान आत्मा राम है और हर एक प्राणी भी आत्मा है, तो आत्मा में और उनमें फर्क क्या है, ये प्रश्न है। आत्मा राम का मतलब है अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट होना। आत्मा शब्द कभी कभी इसका अर्थ होता है शरीर, कभी कभी आत्मा मन को भी संबोधित करता है, कभी कभी ज्यादातर आत्मा जीव को संबोधित करता है, और कभी कभी आत्मा भगवान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द स्वयं, आत्मा मतलब स्वयं, तो आत्मा राम मतलब जो अपने ही अंदर जो संतुष्ट है। राम मतलब संतुष्टि, आनंद। तो भगवान को भी इसलिए आत्मा राम कहा जाता है कि वो अपने आप में ही पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उन्हें भौतिक शक्ति में या अपने आप के बाहर कहीं भी आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग लेकिन जीव हैं, जीवात्मा, हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। इसलिए हम जीव भी आत्माराम हो सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति करें तब। लेकिन भगवान को किसी की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती आत्माराम बनने के लिए, उनका स्वरूप ही है आत्माराम होना। लेकिन जीव जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा वो उसके स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। जीव का भी स्वरूप है आत्माराम होना, लेकिन बद्ध अवस्था में वो भी उसके स्वरूप को भूल गया है और उसके स्वरूप में जीव भगवान का दास है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। इसलिए हर एक जीव को चाहिए कि वो अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए और वो भी आत्माराम हो जाए। गुणात्मक दृष्टि से भगवान और जीवात्मा समान है, दोनों आत्माराम है। और कोई प्रश्न? वो अलग बात है, वो कुछ उसको कुछ आध्यात्मिक जीवन से कुछ संबंध नहीं है। प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति का शरीर जलाया जाता है मृत्यु के बाद, तो अस्थियों में कुछ लोग कहते हैं कि कुछ पाया जाता है, आत्माराम है क्या है। लेकिन आत्माराम तो आत्मा को संबोधित करता है। आत्मा तो मृत्यु के बाद तो शरीर को छोड़ के चली जाती है अपने गति अगले गति में चली जाती है आत्मा। फिर आत्मा को शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। और वे शरीर नष्ट हो ही गया तो आत्मा तो उसका संबंध शरीर से काट देती है और आगे जहां भी उसकी अगली गति है वहां पर चली जाती है। अस्थि एक प्रथा है, ये क्या चीज? अस्थि तो शरीर जलाने के बाद अस्थि का एक रूप आता है जो कि बिल्कुल ऐसे एक व्यक्ति के रूप में हो जो समाधि में बैठता है। वो हो भी, वो तो केवल हड्डियों का, यह तो इसमें कोई आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ये तो केवल भौतिक है। जब आत्मा चली गई है तो फिर शरीर का क्या कुछ मतलब? और अगर शुद्ध भक्त है ही, शुद्ध भक्तों के शरीर को जलाते नहीं है, शुद्ध भक्तों के शरीर को दफना देते हैं। जलाते क्यों है शरीर को? शरीर को शुद्ध करने के लिए, और जो आत्मा का संबंध शरीर से है उसको काटने के लिए। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो पहले से ही अपने शरीर से निरासक्त होते हैं, पहले से ही पूरी तरह से शुद्ध होते हैं, तो उनके शरीर को जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी क्योंकि उनका शरीर शुद्ध है तो जैसे है वैसे दफना देने से वो समाधि बन जाती है, उनकी समाधि स्थली हो जाती है, जहाँ अनेक भक्त आके वहाँ पे उनके आध्यात्मिक संग का लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस व्यक्ति के हृदय में अपने परिवार के प्रति बहुत इच्छाएं होती हैं, तो क्या उसका जन्म उसी परिवार में होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके कर्मों के हिसाब से वो यमराज निर्भर निर्णय लेंगे। पहले उनको कहाँ भेजना, नरक भेजना, स्वर्ग भेजना, उसके बाद में यहाँ आना। और अगर हो सकता है उसी परिवार में जन्म हो भी, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि केवल मनुष्य शरीर में उनको परिवार में जन्म मिलेगा। हो सकता है कि एक कॉकरोच के रूप में उस परिवार में जन्म ले, उस घर में, कि एक चूहे के रूप में उसी घर में आ जाए, क्योंकि घर से बहुत आसक्ति थी तो घर में आएगा लेकिन चूहे के रूप में, कॉकरोच के रूप में। और उसके पुण्य रहे तो व्यक्ति के रूप में भी आ सकता है, मनुष्य के रूप में, कुछ कह नहीं सकते। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने पुत्र का पुत्र के रूप में आ जाता है। मध्वाचार्य के एक भक्त के साथ ऐसे हुआ, जिन्होंने मध्वाचार्य के जन्म के समय बहुत भेंट दिया था, गाय का वगैरह उनके पिता को। तो मध्व विजय में नारायण पंडिताचार्य बताते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने पुत्र का रूप धारण किया और वो आगे चल के मध्वाचार्य के शिष्य बने और इस तरह से उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। इसका मतलब है कि व्यक्ति उसी घर में भी जन्म ले सकता है, लेकिन वो यमराज निर्णय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत खतरनाक बीमारी है और जो अच्छे ही काम करता है, तो हमें इस परिस्थिति को कैसे समझना चाहिए, यह प्रश्न है। जो हम अभी करते हैं उसका फल हमें आगे चल के मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति अब अच्छे काम कर रहा है तो इन अच्छे अच्छे कामों का फल अवश्य आगे चलकर मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन अब जो उस व्यक्ति को दुख भुगतना पड़ रहा है, कोई खतरनाक बीमारी है या कोई और कष्ट है, ये पूर्व जन्मों के पापों का फल है। जो भी दुख हम अभी भुगतते हैं वो हमारे पूर्व का पापों का फल है, और जो हम सुख की अनुभूति करते हैं इस दुनिया में वो हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल हैं। इसलिए पाप और पुण्य चक्र चलता रहता है, लेकिन जब आदमी भगवान का भक्त बन जाता है तो पाप पुण्य का चक्र काट के ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा के वो भगवान के धाम में लौट कर चले जाता है। तो भक्तों को चाहिए कि अपने जो पूर्व जन्मों के फल को, अपने प्रारब्ध को बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार करना चाहिए, भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करना चाहिए और अपनी भक्ति करते रहना चाहिए। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग वपुर्भिर् विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो, मैं आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहूंगा और ये स्वीकार करूंगा कि जो मेरे हृदय जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, कृतम विपाकम, वो मेरे पाप कर्मों का फल है। और इन प्रारब्ध को स्वीकार करते हुए मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, मेरे हृदय से, अपने वचनों से, अपने शरीर से, अपने मन से।